नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक में शामिल हुए। सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति रणनीतिक मामलों पर निर्णय लेने वाली देश की सर्वोच्च संस्था है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति पर चर्चा हुई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री को हाल के घटनाक्रमों पर भारत की चिंताओं से अवगत कराते हुए नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त करने के पक्ष में है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बातचीत की। श्री मोदी ने यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की और इन हमलों में जान गंवाने वालों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में यूएई के साथ एकजुटता से खड़ा है। उधर ईरान में सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद वरिष्ठ धर्मगुरु आयतुल्ला अली रेजा अराफी ईरान के अंतरिम सर्वोच्च नेता के रूप में कार्यभार संभालेंगे। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ISNA के अनुसार अराफी को अस्थायी नेतृत्व परिषद के न्यायविद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ईरान की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत अंतरिम परिषद में राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और संरक्षक परिषद के एक धर्मगुरु शामिल होते हैं। खामेनेई के मौत के बाद यह परिषद संयुक्त रूप से देश का नेतृत्व करेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के 9 नौसैनिक जहाज नष्ट कर दिए गए हैं। ट्रुथ सोशल पोस्ट में ट्रंप ने चेतावनी दी कि अमेरिका ईरान के शेष नौसैनिक जहाजों का पीछा कर रहा है और वे भी जल्द ही नष्ट कर दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के नौसैनिक मुख्यालय को भी काफी हद तक नष्ट कर दिया गया है। वहीं इसराइली रक्षा बल IDF ने कहा है कि उसने ईरान की राजधानी तेहरान पर हवाई वर्चस्व हासिल कर लिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में IDF ने कहा कि उसकी वायुसेना तेहरान में सक्रिय है और कई ठिकानों पर हमला करके उन्हें नष्ट कर दिया है। IDF ने बताया कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर मुख्यालय और वायु रक्षा प्रणालियों पर हमले किए गए हैं। इसके अलावा संघर्ष की शुरुआत से ईरान के 50 से अधिक ड्रोन हमलों को इसराइली वायुसेना के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर द्वारा सफलतापूर्वक रोका गया है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर मंत्रालय का यात्री सहायता नियंत्रण कक्ष यात्रियों की शिकायतों और प्रश्नों का सक्रिय रूप से समाधान कर रहा है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि नियंत्रण कक्ष ने एयरलाइंस और हवाई अड्डा संचालकों के समन्वय से 411 यात्रियों की शिकायतों का समाधान किया है। मंत्रालय से हेल्पलाइन नंबर 011-2460-4283 और 011-2463-2987 पर संपर्क करके सहायता प्राप्त की जा सकती है। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग आज एक उच्च स्तरीय बैठक करेगा। वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त और उप निर्वाचन आयुक्त के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल सुबह 11 बजे से कई सत्रों में वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल होगा। बैठक में राज्य की कानून व्यवस्था, सुरक्षा बलों की तैनाती और प्रशासनिक समन्वय पर चर्चा होगी। नागालैंड विधानसभा के बजट सत्र का पहला चरण आज से 12 मार्च तक चलेगा। इस दौरान 5 सत्र आयोजित होंगे। केंद्र, राज्य सरकार और पूर्वी नागालैंड जन संगठन के बीच सीमांत नागालैंड क्षेत्र प्राधिकरण पर त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर के बाद यह पहला विधानसभा सत्र है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल अजय कुमार भल्ला सदन को संबोधित करेंगे। और खेलों में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 196 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने 4 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। संजू सैमसन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।